मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
ओम शांति। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। आप सबको एक विशेष भूमि पर भट्टी करने का गोल्डन चांस मिला है, इसलिए अपने भाग्य की सदा सराहना करते रहेंगे। चंडीगढ़ में कितने भाई बहन हैं और उसमें से अनीता बहन ने और कविता बहन ने आप सबको सिलेक्ट किया है, तो ये आपके लिए बहुत भाग्य की बात है। हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज के इस क्लास में आवाज ताली की ताली बिल्कुल नहीं बजानी है, मौन भट्टी है, एक हाथ की ताली। तो हमारी शीलू बहन भट्टी का उद्देश्य बताने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। शीलू बहन से तो सभी परिचित हैं, सभी परिचित हैं ना, फिर भी हमारी मीनू बहन के मन में एक संकल्प आ रहा है कुछ शीलू बहन के लिए दो शब्द बोलने का, तो एक हाथ की ताली से हम शीलू बहन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और पांडव भवन की भट्टी का उद्देश्य लक्ष्य हम सुनेंगे शीलू बहन से। मीनू बहन दो शब्द कहना चाहती हैं।
ओम शांति। एक विशेष बाबा के रतन हमारे बीच में है। बाबा ने आपको वरदान दिया है हर की पौड़ी, तो मैं कुछ लाइनें आपके लिए कहूंगी। दिलो जान से आपने बाबा को अपनाया, हर की पौड़ी का वरदान बाप से पाया, अंतर मुक्ता के द्वारा ज्ञान धन आपने कमाया, देश विदेश में उसे लुटाकर अनेकों को आपने बाबा का बनाया, टीवी पर बाप की प्रथम आवाज बनी आप, योग कॉमेंट्री द्वारा अनेकों को बाप तक पहुंचाने की सूत्रधार बनी आप, आपका दिल से करते हैं अभिनंदन जो अनुभवों के मोती बिखेरने हमारे बीच में पहुंची है आप, हमारे बीच में पहुंचे हैं आप। बहुत जोर से एक हाथ की ताली से दीदी जी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो एक दो को कैसे ग्रीट करते हैं, पहले दृष्टि के द्वारा और फिर ओम शांति के द्वारा। उस दृष्टि में आत्मिक स्मृति रहती है और फिर ओम शांति कहने से बाबा याद आता, घर याद आता, अपना कर्तव्य भी याद आता है। तो आप सभी को प्यारे मधुबन में बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और व्यक्तिगत मेरे तरफ से भी आपका बहुत 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 कितनी बार बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि परिवर्तन भूमि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि तथा सब दादियों की भी कर्म भूमि जहां पर लाखों आत्माएं आकर भगवान से अपना संबंध जोड़ती है, ऐसे भूमि पर आप सभी पहुंचे हो। हमारी शील बहन जो आपकी भट्टी का पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे, शील बहन आप भी अपना परिचय देते होते तो बाद में देना। तो जैसे शील बहन ने बताया कि बहुत आना चाहते होंगे इस भट्टी में, लेकिन आप ही गिने चुने भाई बहने हैं जिनका चांस लगा और यहां पहुंचे। ऐसे भी होंगे जिनका नाम भी था लेकिन लास्ट मिनट पर उनका कैंसिल हो गया कोई न कोई कारणवश, और ऐसे भी होंगे जिनका कोई नाम भी नहीं था लेकिन आखिरी मिनट उनका नाम ऐड हो गया, ऐसे भी होंगे। लेकिन बाबा के घर में आए ये बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। आप में से ऐसे भी होंगे कई जो मधुबन में आते तो होंगे चार धाम की यात्रा करने, क्योंकि शांतिवन में रहते हैं और यहाँ चार धाम की यात्रा करने आते हैं, लेकिन ऐसे भी होंगे जो पहली बार मधुबन तपोभूमि में रहेंगे। तो जो पहली बार इस कल्प में मधुबन तपोभूमि में रह रहे हैं या रहना शुरू किया वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे हैं। और कल आज सुबह मुझे एक बहन बता रही थी कि मैं आई ही पहली बार हूँ। कौन थी बहन? अच्छा, आप। हाँ, आई पहली बार है मधुबन, नीचे शांतिवन में भी नहीं आई। अच्छा, ऐसे कौन है जो आई पहली बार है मधुबन? अच्छा, वो भी है। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्माएं है ना। तो देखो सीधा आते ही भट्टी में आप पकने के लिए पहुंचे हैं। तो बहुत सुंदर, जैसे ही आप कल रात को आए तो आपको एक माला पहनाई गई है। कईयों की नहीं है माला, कहाँ गई आपकी माला? है ना, सबके गले में है माला। तो ये माला आपको किस लिए पहनाई गई? ये माला तो आज बाबा ने कहा, हाँ, वरमाला तो है ही है, लेकिन ये माला संकल्प की माला है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? मौन योग तपस्या भट्टी। तो ये प्रतिज्ञा की माला है, संकल्प की माला है कि जैसे ये माला पड़ी माना मेरी योग तपस्या, योग मौन योग तपस्या भट्टी शुरू हुई। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है इस भट्टी का। सबसे पहला लक्ष्य है मौन, मौन में रहना। सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? बाबा कई बार प्रश्न करते हैं, आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? तो वैसे तो आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए, बात ही नहीं करनी है, शांति है। लेकिन देखा गया है कि आवाज में आने की इतनी आदत होती है कि जो आवाज में न आने के लिए कहा जाता है तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। है ऐसा कि नहीं कि आवाज में न आना सहज है? आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? परे जाना सहज है, सच्ची बात है। कई फेल हो जाते हैं, कोई कोई पास होते हैं। अगर सचमुच दृढ़ संकल्प करें तो कि मुझे 3 दिन बिल्कुल मौन में रहना है, कोई टेलीफोन भी नहीं करना है, किसी का टेलीफोन का जवाब भी नहीं देना है, सबको बता दें कि अभी मेरे को कोई टेलीफोन न करे, मैं आराम से पहुंच गई ना, क्योंकि घर वालों को चिंता होते ना, पता नहीं ठीक ट्रेन पहुंची नहीं पहुंची, सबने घर में तो बता दिया होगा ना, सब निश्चिंत तो हो गए होंगे ना, और उनको कह भी दिया कि अभी दोबारा फोन नहीं करना, कि नहीं कहा, नहीं कहा, माना बात करेंगे ऐसे नहीं, आप उनको आज ही रात को बता दो कि आज से मेरी मौन योग तपस्या भट्टी शुरू हुई है, अभी 3 दिन मुझे कोई फोन न करे, आपके ये छोटे छोटे खिलौने जेब में पड़े हैं, पर्स में पड़े हैं, उनको स्विच ऑफ ही कर दो, ताकि न ऑन हो न आए कोई रिंग, या आप करो, हो सकता है ऐसे कि मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, तो ये भी सहज है, तो मौन में रहना सहज होगा, क्योंकि संकल्प है तो सहज क्यों नहीं होगा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो पहला तो ये लक्ष्य है मौन, पर उसमें भी और गहराई की, केवल मुख का मौन नहीं परंतु मन का भी मौन, क्योंकि यहाँ आपको और तो कुछ करना नहीं है, करना है और कुछ, बस जो कुछ आपका जो रेगुलर वर्क है वो तो करेंगे ही, अपने तन के लिए वो तो जो है वो तो करेंगे, पर भोजन बना बनाया मिलेगा और बहुत अच्छा मेन्यू बनाया 3 दिन का, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, इसीलिए उसकी भी आपको चिंता नहीं, करने वाले दूसरे हैं, जो सेवाधारी आते हैं उनकी एक खास ड्यूटी होती है, तो इसीलिए भोजन पकाने की भी आपको कोई चिंता नहीं है, बाहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहना है, सवेरे केवल ओम शांति भवन जाते हैं, और अगर शाम को बारिश हुई तो फिर ओम शांति भवन में आपका शाम का सत्र होगा, नहीं तो यहाँ ही करेंगे, क्योंकि मधुबन वाले सेवाधारी और हॉस्पिटल ये सब बहुत होते हैं, तो वो फिर नीचे करते शांति स्तंभ पर, तो इसीलिए केवल बस पांडव भवन और ओम शांति भवन, और कहीं मार्केट वार्केट तो नहीं जाना ना, किसी को इतने थोड़ा यहाँ खरीदारी तो करे, बिल्कुल नहीं, 3 दिन बिल्कुल एक ही लक्ष्य लेकर के यहाँ हम उपस्थित हैं कि हमें मौन योग तपस्या भट्टी करनी है। तो सबसे पहला लक्ष्य है मन का भी मौन, और फिर जब योग तपस्या भट्टी कहते हैं तो भट्टी का बड़ा गहरा अर्थ है, भट्टी माना पकना, भट्टी में जो चीज पड़ती है वो उसी रूप से बाहर नहीं आती है, आग के अंदर वो तपती है, पकती है, गलती है, न जाने क्या क्या आग के अंदर होता है उसका, तो तपती भी है, पकती भी है, गलती भी है, शुद्ध भी होती है, सारा रूप रंग गुण सब उसका बदल जाता है जैसे ही अग्नि में वो चीज पड़ी। बहुत चीजें हैं, अलग अलग उनका हिसाब होता है, तो आप भी भट्टी में आए हो तो तपने के लिए भी आए हो, पकने के लिए भी आए हो, शुद्ध होने लिए भी आए हो, परिवर्तन होने के लिए भी आए हो, और सबसे ऊंचा लक्ष्य संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, देवता बनना है, वो तो बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन की भट्टी में तो ये लक्ष्य जरूर रखना, कि अग्नि योग की अग्नि में तपना है और ऐसी तपस्या करनी है जो यहां से जब हम जाएं तो हम उसी रूप में न जाएं। हमारे अंदर कोई भी अगर पुराना संस्कार है जो हमें ही दुख दे रहा है, उस संस्कार को यहां गलाना है। कैसे गलाएंगे उसको? दृढ़ संकल्प के द्वारा। किसी भी प्रकार का संस्कार, बहुत संस्कार, पुराने संस्कार हम सब में अभी भी हैं। बाबा कहते हैं कि ये पुराने संस्कार, जिसको हम पुराना संस्कार कहते हैं, ये तो द्वापर युग के संस्कार है, परंतु हमारे अनादि संस्कार, आदि संस्कार तो बहुत ही ऊंचे हैं। इसलिए उन संस्कारों को याद करना है और ये जो पुराने संस्कार है इनको खत्म करके जो अति पुराने संस्कार उनको जगाना है। है तो हमारे अंदर ही, लेकिन जैसे आज भी बाबा ने कहा, कल भी कहा था कि बाबा आकर के हमको तीसरा नेत्र देते हैं ज्ञान का। तो तीसरा नेत्र तो मिल गया है, लेकिन इस तीसरे नेत्र में कभी कभी होता है ना, आंखों में रोशनी थोड़ी कम होती है तो दिखाई कम देता है, अर्थात दूर की नजर या नजदीक की नजर कुछ न कुछ तो कम हो ही जाती है। तो लेकिन तीसरा नेत्र तो हमारा इतना पावरफुल है, जिसकी नजर तो कम नहीं होती ना, इसकी नजर कम नहीं हो सकती। और ये कहाँ तक नजर जाती है? एक तो तीनों लोकों तक जाती है, तीनों कालों तक जाती है, और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर भी जाती है, हमारे अंदर भी जाती है, यानी खुद को भी हम इस तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। इसलिए तीसरे नेत्र के द्वारा जो हमारे लिए सच्चा आईना है, उस आईने के द्वारा हमें क्या क्या देखना है। तीनों लोकों का, तीनों कालों का तो दर्शन करना ही है, लेकिन साथ साथ अपने अंदर का भी दर्शन करना है कि वास्तव में मैं क्या था, क्या बनना है और वर्तमान मेरी स्थिति कैसी है। तो आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है, फिर आत्मविश्लेषण करने का भी आपको समय है। तो निरीक्षण करके, विश्लेषण करके फिर आत्म संयम करना होगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो उस तीसरे नेत्र से ये सब भी अंदर का भी देखना है, क्योंकि हम अपने अनादि और आदि स्वरूप को इस तीसरे नेत्र से ही पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम कितने ऊंचे थे और अभी क्या स्थिति हो गई, तो फिर से हमें इतना ऊंचा बनना है, ये लक्ष्य कभी न भूलें। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि तीसरा नेत्र तो खुला हो ही, लेकिन ये जो दो नेत्र हैं, इसमें भी एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति, इसके सिवाय और कुछ दिखाई न दे। घर जाना है, नई दुनिया में आना है, बाप के पास जाना है, बाप से वर्षा पाना है। तो घर और नई दुनिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति, बाप और वर्षा, ये दो आंखों में हो। या कई बार बाबा कहते हैं बाप और दादा, ये दो इन नजरों में हो। तो शिव बाबा को याद करना है, बाप को याद करना है और दादा को फॉलो करना है। बाबा दादा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मुझे याद नहीं करो, करो तो शिव बाबा को करो याद। पर हाँ, किसके थ्रू? तो पता है कि शिव बाबा ने अपना परिचय ब्रह्मा के द्वारा दिया है, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को हम भूल तो सकते नहीं है, अलौकिक पिता है, लेकिन याद हमको शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा की भी याद आए तो भी ब्रह्मा बाबा तो माध्यम है, शिव बाबा इनके द्वारा हमें सुनाते हैं, इसीलिए दोनों बाप को शुक्रिया तो करते हैं। अगर ब्रह्मा बाप नहीं होता तो शिव बाबा भी कहाँ मिलता, उनका परिचय भी कौन देता। इसीलिए रथ का अपना महत्व है, लेकिन बाबा कहते हैं याद तो शिव बाबा को करना है। तो इसीलिए इस योग तपस्या के अंदर ये लक्ष्य हमारा पक्का हो, पहले तो खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखना है। बाबा कई बार कहते हैं कई बच्चे उनकी दूर की नजर बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है। दूर की नजर तेज माना दूसरों को ही देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। हर एक अपना मालिक है, हर एक को पता है कि उसको क्या करना है। इसीलिए हमें किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है। परंतु खुद को देखना है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर कोई दूसरा नहीं भी कर रहा है ठीक, तो मैं वाणी में आकर के उनको न कहूँ, और संकल्प ही ऐसे मेरे ऊंचे हो जो अपने आप वो संकल्प उसको पहुंच जाए, या मेरे कर्म इतने अच्छे ऊंचे हो जो कर्म से प्रेरणा ले ले, लेकिन वाणी में नहीं आना है। तो इसीलिए दूसरे को देखना ही नहीं है, खुद को ही देखना है। तो जब खुद को ही देखेंगे तो दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं होगा, तो कितना समय हमारा बच जाएगा। एक तो मौन के कारण बच जाएगा समय, क्योंकि आवाज में नहीं आना है, बोलना नहीं है तो ज्यादा सोचना भी नहीं है, तो उसमें भी समय बच जाएगा। दूसरे को नहीं देखना उसमें भी समय बच जाता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत टाइम जाता है, तो वो समय की तो बचत हो ही जाती है। दुनिया में कहते हैं ना हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमको टाइम नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं, टाइम तो अपने आप निकल आता है, क्योंकि पर चिंतन में, पर निंदा में, पर ग्लानी में, पर दर्शन में न जाने कितना समय बर्बाद करते हैं। तो वो जो पर में जो समय जाता था उसको कट कर दो और वो स्व में लगाओ, हर बात में स्व दर्शन, स्व चिंतन, स्व परिवर्तन, स्वधाम, स्वदेश, स्वरूप। तो हर बात में स्व जोड़ना है, पर को खत्म करना है। तो हम कहते हैं कि ये सारे पर खत्म करो, पर एक पर जरूर धारण करो। कौन सा है? एक पर जरूर धारण करना, बाकी पर खत्म करने हैं। पर निंदा, पर ग्लानी, पर चिंतन, पर दर्शन, बहुत कुछ है, पर एक पर जरूर होना चाहिए। वो कौन सा? परोपकार। परोपकार, परोपकार करना है। कोई भी मदद कभी भी उसके लिए ना नहीं करनी है, हर प्रकार से मददगार बनना, क्योंकि ये भी एक सेवा है, परोपकार की सेवा। तो ये कितनी बड़ी सेवा बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो इसीलिए ये पर सदा याद रखो और बाकी सब पर काट करके स्व को याद करो। तो जब हम इस स्व की स्थिति में आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि इस स्व के आधार से तुम सारे विश्व पर भी राज्य करते हो। क्योंकि इस समय हम पहले अपने इंद्रियों को जीतते हैं, फिर मन को जीतते हैं, फिर सबके दिलों को जीतते हैं, तो ये सब जीत पाली तो ऑटोमेटिकली विश्व की जीत भी हो ही जाती है। तो पहले है स्व पर जीत, इंद्रियों पर, मन पर, और फिर दूसरों के दिलों पर, और फिर विश्व पर। दुनिया में देखो उल्टा किया, पहले सोचा कई ऐसे आए, सोचा हम दुनिया पर राज्य करेंगे, अभी भी है कई देश सारी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाना है, तो दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई दुनिया को जीत नहीं सकता जब तक सबका दिल न जीते, और वो भी दिल भी तब जीते पहले अपने मन को जीते। मन को तब जीते जब पहले अपनी इंद्रियों को जीते। तो कैसे होगा विश्व को जीतना? पहले इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में रखना, फिर मन को वश में रखना, फिर सबके दिलों को जीतना, उनमें अपनी जगह बनाना उनके दिल में, और फिर देखो सारी दुनिया नमन करेगी। इसलिए हठ से कुछ नहीं होता है, परंतु बाबा ने विधि बताई है कैसे तुम सारे विश्व पर राज्य कर सकते हो। पहले खुद पर राज्य करो, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट भी सिखाते ना, पहले सेल्फ को मैनेज करो, दूसरों को मैनेज करने से पहले खुद को। कितने भी कई आते हैं हमारे पास, प्रोग्राम्स में आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में के लोग आते हैं, तो हर एक के लिए ये सबक है। टीचर्स के लिए भी ये सबक है, टीचर दूसरों को पढ़ाते हैं, पर वैल्यूज की बातें तब पढ़ा सकेंगे जब पहले खुद उसमें हो। कोई भी प्रोफेशन में मैनेजर है, दूसरों को मैनेज करे पर खुद को न कर सके तो वो मैनेजर का ही काम। तो इसीलिए बाबा हमको अंदर से बाहर ये सिखाते हैं। दुनिया में क्या है? बाहर से अंदर, सब बाहर के इन्फॉर्मेशन, बाहर की बातें अंदर लेकर के किचरा भर देते हैं और अंदर भारी हो जाते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं अंदर से बाहर, इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन, क्योंकि जो आत्मा के अंदर मूल गुण है उनको उजागर करना है, वो तीसरा नेत्र अंतर का खोलना है, जिससे हम पहले खुद को देखते हैं, फिर भले सारी दुनिया को साक्षी और दृष्टा होकर के देखो। इसलिए स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, जो बाबा ने हमें ये नारा दिया है, ये बहुत ऊंचा नारा है। दुनिया वाले विश्व परिवर्तन की बात करते पर स्व परिवर्तन की कोई बात नहीं करता, और जब हम लोग उनको कहते हैं तो लोग हंसते हैं, ऐसे कैसे होगा, एक के बदलने से दुनिया बदल जाएगी, पर एक का बदलने का मतलब क्या है वो भी नहीं समझते। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना दूरांदेशी बनाया है, कितनी विशाल बुद्धि बनाई है। जैसे ही बाबा ने हमें अलौकिक जन्म दिया, ये दिव्य बुद्धि का वरदान हमें दे दिया। भक्ति में तो यही भगवान से मांगते थे ना, क्या मांगते थे, हे भगवान सद्बुद्धि दो, विवेक दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, मांगते थे, कृपा करो, रहम करो। अब बाबा क्या कहते हैं, अपने ऊपर करो। आज भी था ना मुरली में, ये आपको करना है, मैं क्या करता हूँ वो मुझे पता है, शिव बाबा कहते हैं, मेरा कार्य क्या है वो मैं जानता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या कराता हूँ वो मैं जानता हूँ, पर तुमको क्या करना है वो मैं बताता हूँ, वो डायरेक्शन देता हूँ और उस पर तुम चलो बस। तो यही हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य हो। तो ये जब लक्ष्य हमारे अंदर पक्का होगा तो हम उसी अनुसार अपना हर कदम उठाएंगे। तो शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। कई भाई बहने पूछते हैं कि हम बहुत कई बार असमंजस में आ जाते हैं, क्या करें क्या न करें, बहुत हलचल होती है बुद्धि में। तो बहुत हलचल होती है तो उस समय हम क्या करें? तब कहते हैं बहुत सहज उपाय, जब कोई हलचल हो ना तो उस समय ब्रह्मा बाबा को आगे रखो और ये सोचो अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो क्या करते। ब्रह्मा बाबा अगर मेरी जगह होते तो क्या करते, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। शिव बाबा से पूछने की बजाय शिव बाबा क्या करूं, बाबा क्या करूं, बाबा क्या करूं, नहीं, अगर बाबा इस समय होते तो बाबा क्या करते। बाबा वही करते जो श्रीमत है, श्रीमत के विरुद्ध तो बाबा कुछ नहीं करते। तो इसीलिए वो श्रीमत अपने आप याद आ जाएगी, नहीं तो कई बार सोचते क्या श्रीमत कहती है, क्या श्रीमत कहती है, क्योंकि बाबा ने श्रीमत तो दे ही दी है, सुबह से लेकर रात्रि तक की श्रीमत बाबा ने दे दी है। हर कर्म की श्रीमत दे दी है, हर बोल के लिए श्रीमत दे दी है, हर सोच के लिए श्रीमत दे दी है। ऐसी कोई एरिया है या ऐसी कोई बात है जिसके लिए बाबा ने श्रीमत नहीं दी हो? है कोई ऐसी बात? और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पूरा फॉलो किया शिव बाबा को पूरा। ये कभी नहीं बाबा ने सोचा कि अगर बाबा शिव बाबा कहते तो हैं लेकिन पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, कभी नहीं सोचा। शिव बाबा ने कहा और उसको किया तो देखो नंबर वन चले गए। किस आधार पर ब्रह्मा बाबा नंबर वन चले गए? शिव बाबा ने कहा और किया। हाँ, पर पक्के आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार ब्रह्मा बाबा बने। और ब्रह्मा बाबा को देखकर सब दादियों ने वही किया, उनके आगे तो उदाहरण था, चलो ब्रह्मा बाबा दादियों के आगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कौन उदाहरण था? था कोई नहीं, कोई उदाहरण नहीं था। शिव बाबा ने कहा और किया, उदाहरण को देख करके नहीं किया। ब्रह्मा बाबा स्वयं पहला उदाहरण बन गए, दादियों ने फिर भी ब्रह्मा बाबा को देखा और किया। शिव बाबा ने उनके द्वारा कहा वो भी वो तो बात थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा उनके आगे उदाहरण मूर्त थे। और ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या थी कि जो शिव बाबा कहते वो अभी करना है। ये बाबा का बहुत पक्का संस्कार था कि अभी करना है, ये नहीं कि अच्छा ठीक है कल कर दूंगा, दो दिन के बाद करूंगा, चार दिन के बाद करूंगा। कभी बाबा ने किसी भी बात को पोस्टपोन नहीं किया। और हम लोग क्या करते हैं? ठीक है कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे कर लेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जो अभी शिव बाबा मुरलियों में अव्यक्त मुरलियों में तीन बातें कहते हैं, वो बाबा को इतना पक्का था। तीन बातें बाबा कैसे कह, कौन सी कहते हैं? एक तो बाबा कहते अचानक, दूसरा बाबा कहते एवर रेडी, और तीसरा बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास। ये तीन बातें ब्रह्मा बाबा को एकदम पक्की थी। और जैसे शिव बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, पहला पाठ तुम आत्मा हो, ब्रह्मा बाबा ने कैसे इसको पक्का किया? कैसे पक्का किया? बाबा ने अपनी दृष्टि में कैसे परिवर्तन लाया? पूरे परिवार के साथ रहता था बाबा, ये नहीं कि कोई परिवार को छोड़ दिया था, परिवार उनकी युगल बच्चे पोते दोते सब थे बाबा के, बड़ा परिवार था, सब साथ में थे। लेकिन कैसे एक सेकंड में दृष्टि बाबा की बदल गई और प्रजा पिता कहलाए, सबके सब बाबा के लिए बच्चे थे, खाली लौकिक थोड़े। तो इसीलिए एक सेकंड में दृष्टि कैसे बदल गई, बाबा ने प्रैक्टिस की, ऐसे थोड़ी कोई जादू हो गया। बाबा प्रैक्टिस करते थे, बाबा की युगल उनके सामने आती थी तो बाबा कहते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। फिर बाबा की बहू ब्रिजेंद्रा दादी, उनका नाम राधे था, राधिका। तो बाबा कहते थे राधिका आत्मा है, आत्मा है। बहू से बाबा को बहुत प्यार था, बहुत सुंदर थी बाबा की लौकिक बहू दादी ब्रिजेंद्रा दादी, जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, बहुत सुंदर थी जवानी में। और कैसे जब बाबा ज्वेलर थे तो हीरों के ज्वेलरी बनाते थे और बाबा उसको पहनाते थे और बहू को साथ में ले जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास। वो हीरों की ज्वेलरी पहन के जाएगी तो जो रानियां थी वो तो उस पर ही आशिक हो जाती थी, बहू पर ही आशिक हो जाती थी, ये तो बहुत सुंदर लगते ज्वेलरी में, हमको तो ऐसे ही ज्वेलरी चाहिए। बाबा तो बहुत अच्छे सेल्समैन भी थे और वो एक वो साथ में लेके भी आते थे बाबा कि ये इनको देखेंगी ना रानी तो यही पसंद करेगी, और सचमुच वो पसंद वही करती थी तो उनको दे देती थी। एक बार बाबा ने उनको पहनाया, लेकिन साथ में दूसरा कोई सेट लाया नहीं ज्वेलरी का। तो बाबा ने उसको बहू को अंदर में कहा कि बच्ची ये ना निकाल के दे दो, आपको दूसरा और अच्छा बना के देंगे। फट से दे दिया और वो रानी को बेच दिया। यानी कहने का भाव है कि बहू से बहुत प्यार था बाबा को, और वो भी बाबा की बहुत आज्ञाकारी थी। तो मोह भी था और बहू का भी बहुत मोह था, ससुर थे लेकिन पिता से भी आगे थे। तो बाबा कैसे, उनको भी आत्मा देखना है, आत्मा देखना है, कैसे दृष्टि बदली। तो बाबा क्या करते थे, दीवारों पर लिखते थे, दीवारों पर यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि वो भी पढ़े। उनको ये नहीं कहते थे तुम अपने को आत्मा देखो, ये लौकिक संबंध बुद्धि में मत लाओ, बस दीवारों पर लिखते थे। अब वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे ये बाबा ने लिखा है, माना वो कितना अभ्यास कर रहा है, हमको भी ऐसा अभ्यास करना है। तो कैसे सहज हो गया दृष्टि परिवर्तन, इतना सहज हो गया जो कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी यज्ञ के अंदर। माँ बेटी अनु जो लौकिक संबंध भी सब खत्म हो गए। मम्मा की लौकिक माँ थी रोचा बहन उनका नाम था। तो जब बाबा ने मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया तो सबने मम्मा कहना शुरू किया, क्योंकि बाबा ने उनको मम्मा कहा। तो 16 साल की थी, बाबा तो 60 साल के थे, परंतु बाबा ने सबसे पहले मम्मा का, माँ यज्ञ की माँ। तो जो मम्मा की लौकिक माँ थी वो भी क्या कहेगी अपनी बेटी को, वो भी मम्मा कहेगी। तो इसीलिए सबके लिए मम्मा हो गई। तो लौकिक संबंध जो बुद्धि में पहले तो यही था ना, कैसे एक धक से बदल गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना जो लौकिक का जो था वो भी हिसाब किताब एक सेकंड में खत्म किया। यहाँ तक कि भाषा भी बदली। आप लोगों को मालूम था सिंध में रहते थे तो सिंधी बोलते थे, लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो शिव बाबा ने तो हिंदी में बोलना शुरू किया। और सारी बहनें तो सिंधी थी, कई बड़ी थी उम्र की, उनको हिंदी तो आती ही नहीं थी, जो जिस स्टेट में रहते हैं वही भाषा बोलते हैं। लेकिन बाबा ने एकदम मना कर दिया, कोई भी सिंधी भाषा में नहीं बोलेगा। इसलिए देखो हमारी जो बड़ी बड़ी दादियां वो तो सिंधी भूल गई है भूल गई, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा बादशिव बाबा तो हिंदी में ही बोलते हैं। दूरदृष्टि थी ना बाबा की कि भारत से सारे विश्व में जाना है तो भारतवासी सिंधी थोड़ी जानते हैं, इसीलिए हिंदी। तो हिंदी को बाबा ने महत्व दिया, भाषा को उसी अनुसार महत्व दिया। तो सब परिवर्तन, क्योंकि बाबा जो बोलेंगे वही सब बोलेंगे। तो बाबा को देख करके सबने कहा। तो ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। तो ये विशेषता बाबा की फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है, ब्रह्मा बाबा अभी यहाँ होते तो क्या करते हा? तो ये ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। फिर दूसरी बात जो ब्रह्मा बाबा ने किया, कैसे किया, जब गुलजार दादी पहली बार सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया दादी ने, तो उस समय ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्वरूप को देखा। तो जब अव्यक्त स्वरूप का के वर्णन किया तब ब्रह्मा बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है। तो बाबा के अंदर ये लगन लग गई, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना ही न्यारा बनना पड़ेगा, इतना ही अशरीरी बनना पड़ेगा। उसके पहले तो था भाई विश्व नारायण बनना है, वो अलग बात, लेकिन संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो न्यारा बनने के लिए वो आत्माभिमानी स्थिति बनानी है। तो बाबा इतनी प्रैक्टिस करते थे वो आत्माभिमानी स्थिति की, क्योंकि संपूर्ण बनना है। यहाँ तक कि गुलजार दादी को बाबा कहते थे जाओ वतन में देख के आओ कि ये जो साकार स्वरूप है वो अव्यक्त स्वरूप से कितना दूर है, क्योंकि दादी दो स्वरूप देखती थी बाबा का वतन में। क्योंकि पहली बार जब गई तो बाबा का अव्यक्त रूप उनको दिखाई दिया, फरिश्ता स्वरूप लाइट लाइट में, तो दादी तो डर गई कि ये पता नहीं क्या, बाबा को तो मैं नीचे देखती हूँ, ये कहाँ देख रही हूँ, क्योंकि सूक्ष्म वतन लाइट की दुनिया में और ये बाबा का ऐसा आकार रूप देखा तो समझ नहीं पाई। लेकिन जब बाबा को आकर के बताया तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्ची आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो, आपका इनका ही स्वरूप वो दूसरे लाइट के रूप में, इसका मतलब क्या है, तो पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो। अभी ये पूछे कैसे, वो तो डर गई और एकदम से नीचे आ गई। तो जब श्रीमत दादी को मिली कि तुम पूछो कि आप कौन हो, तो जब दोबारा फिर यह अनुभव हुआ तो उनसे पूछा आप कौन हो, तब उस स्वरूप ने बताया जो ब्रह्मा बाप का संपूर्ण स्वरूप वतन में देखा, कि मैं ब्रह्मा बाप का जो साकार में है उनका संपूर्ण स्वरूप हूँ, और ये ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन करके ये बनेगा, ये उस अव्यक्त रूप ने ये राज खोला। तब उसके बाद ब्रह्मा बाबा के अंदर में एक लगन लग गई कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। और बीच बीच में बाबा दादी से कहते थे कि जाओ वतन में देख के आओ कितना नजदीक हूँ, इसीलिए हमेशा दादी दो रूप देखती थी और वो कैसे धीरे धीरे निकट हो रही है, निकट आ रही है, वो मार्जिन खत्म हो रही है। और जिस समय बाबा अव्यक्त हुए हैं उसके बाद गुलजार दादी वतन में गई है, बॉडी को तो यही रखा था हिस्ट्री हॉल में, लेकिन जब वतन में गई तो देखा कि वो दो रूप अभी खत्म, अभी वो साकार रूप अव्यक्त में मिल गया और एक ही स्वरूप। और जब बाबा से पूछा कि बाबा आप चले कैसे गए, तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया हूँ, केवल कपड़ा और कमरा बदली किया है, देह जो हड्डी मांस की देह वो छोड़ी और अव्यक्त देह धारण की, और साकार वतन रूपी कमरा छोड़ा और अव्यक्त वतन का कमरा लिया, तो बस कपड़ा और कमरा बस यही चेंज किया है, बाबा गए नहीं है। यानी ब्रह्मा बाबा के अंदर जो लगन थी संपूर्ण बनना है संपूर्ण बनना है, ये लगन इनका इतना श्रेष्ठ संस्कार था, चाहे बिजनेस में भी थे, जो करना है वो दृढ़ संकल्प करके करते थे, तो ज्ञान में भी यही था उनका, इसीलिए इतना जल्दी संपूर्ण बन गए। तो इसीलिए बाबा हमसे यही चाहते, अभी भी कई बार अव्यक्त मुरलियों में हम पढ़ते हैं ब्रह्मा बाप बोले शिव बाप बोले, क्या ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि देखो ब्रह्मा बाप तो इतना जल्दी संपूर्ण हो गया, लेकिन बच्चों के बिगर कैसे सतयुग का गेट खोलेंगे, बच्चों के साथ ही खोलेंगे, घर भी बच्चों के साथ ही जाएंगे, एक अभी तो कोई परमधाम नहीं जा सकता है, साथ में ही जाना है, तो अभी तक बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए, ब्रह्मा बाबा इतना जल्दी तैयार हो गया, बच्चे क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं, ताकि घर जा सके एक साथ और नई दुनिया में आ सके एक साथ। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछते हैं कि बच्चे जल्दी क्यों नहीं तैयार हो रहे, तो शिव बाबा धीरज देता है बच्चे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को धीरज देता है कि बच्चे जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, सब कुछ समय अनुसार होगा, परंतु ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता है कि जो करूं करना ही है, इतनी दृढ़ता थी ब्रह्मा बाबा में। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि घर जाना है उसके लिए संपूर्ण बनना है, पर संपूर्ण बनने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्यों बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो पेपर होगा वो एक सेकंड का होगा, एक सेकंड का। देही अभिमानी स्थिति या शरीरी स्थिति या विदेश स्थिति, एक सेकंड का अंतिम पेपर होगा, कि उस समय और कोई याद न आए सिवाय बाबा के। और वो कौन सा एक सेकंड का प्रश्न होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, बस वो केवल हाँ और ना का ही जवाब होगा, इसलिए एक सेकंड का पेपर, एक सेकंड मतलब या तो हाँ या तो ना, और कोई भी देहधारी की याद आई माना खत्म फेल। परंतु उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और बहुत काल का अभ्यास इसलिए भी चाहिए, बहुत काल का अभ्यास अगर होगा तो हम सदा एवर रेडी रहेंगे, जैसे बच्चा पढ़ाई कर चुका है तो कभी भी एग्जामिनेशन आए उसको परवाह नहीं है, एवर रेडी है, वो रेडी है, तैयार है, कभी भी आए एग्जाम उसको डर नहीं होगा। पर जो पढ़ाई नहीं करेगा, लास्ट मिनट तक इंतजार करेगा कि हाँ पढ़ूंगा पढ़ूंगा, तो वो तो अगर अचानक परीक्षा आई तो डर जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते होना तो अचानक है, अचानक का पाठ बाबा कितने समय से पढ़ा रहे हैं, अचानक तो अचानक ही होगा, पहले से बाबा कुछ नहीं बताते, कभी नहीं, कल क्या होगा आज नहीं बताएंगे, लेकिन अचानक होने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए इस भट्टी में ये भी एक बहुत ऊंचा हमारा लक्ष्य हो कि हमको बाप समान बनना है, हमको संपूर्ण बनना है। तो इसीलिए मुझे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और मधुबन एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है जहां आप ये अभ्यास बहुत सुंदर रूप से कर सकते हो एकदम। वैसे भी देखो मौसम इतना बढ़िया है, वहां तो गर्मी होगी ना, चंडीगढ़ में गर्मी थी, ठंडी थी, बहुत गर्मी थी, और उस गर्मी से यहाँ आए हो, छाता वाता ले आए हो कि नहीं, ले सब लाए, गर्म कपड़े भी लाए हो ना कि नहीं, नहीं लाए। सुबह सुबह थोड़ी ठंडक होगी, अगर बारिश पड़ेगी ना तो ठंड लगती, नहीं तो ऐसे नहीं, परंतु हो सकता अगर बारिश पड़ी तो इसीलिए यहाँ का सूक्ष्म वतन का अनुभव होता है। सवेरे देखा ना आपने कैसे बादलों के बीच में ही हम सैर कर रहे हैं, ऐसे अनुभव हुआ। तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है कि हम बादलों के बीच में चल रहे हैं, सूक्ष्म वतन का अनुभव। तो जबकि स्थूल रूप में भी सूक्ष्म वतन का ही अनुभव यहाँ कर सकते हैं, तो सूक्ष्म में कितना अनुभव करना होगा कि हम सूक्ष्म वतन में हैं। और फिर ये चार धाम की यात्रा आपको करनी है, क्योंकि यही चार धाम ब्रह्मा बाबा की यादगार है। तो इसलिए यादगार स्थान जहाँ एक एक धाम में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कैसे सब संबंधों का अनुभव कराते थे। जब बाबा के कमरे में जाते थे तो बाबा मात पिता का अनुभव कराते थे, जैसे हम अपने माँ बाप से मिलते हैं, बाबा की गोद में जाते थे, बाबा से रूरिहान होती थी, दिल की बातें होती थी, जैसे बच्चे अपने माँ बाप से मिलते हैं, तो बहुत सुंदर अनुभव बच्चे बाबा के कमरे में करते थे। तो जब बाबा के कमरे में आप जाएं, तो बाबा को मात पिता के रूप में देखें, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे मात पिता बन करके हमको अपनी गोद में ले रहे हैं, ये अनुभव करें। फिर बाबा की झोपड़ी में जाते हैं तो झोपड़ी में बाबा को क्या अनुभव करें, सखा के रूप में जो भी दिल की बात है वो सब बाबा को बताओ। हमारे पास बहुत आते हैं वो बाबा के कमरे की, बाबा की झोपड़ी में वो लिखा है बाबा को पत्र, तो पत्र लिखते हैं और सचमुच कितना अनुभव सुनाते हैं कि हमने जो बाबा को पत्र में लिखा वो पत्र वो बॉक्स में डाला, बाबा ने मुझे उसका जवाब दिया, उसका अनुभव कराया, बहुत चमत्कार देखते, बहुत अनुभव सुनाते हैं। तो आपको भी इस भट्टी में लिखाया जाएगा ना बाबा को पत्र, बाबा को पत्र लिखाया जाएगा, तो आप उसको लिखना, परंतु बाबा की झोपड़ी में बैठ करके बाबा से अंदर की दिल की बातें करना। और ये गारंटी है बाबा किसी को नहीं बताएंगे, दिल की बात आप बाबा को खूब करो, सीक्रेट आपके अपने सीक्रेट्स भी बाबा को सुनाओ और हल्के हो जाओ। फिर कोई ऐसी बात भी है अंदर मन खाता है, कुछ भी है, बाबा को लिख करके डाल दो, तो देखो वो भारीपन भी खत्म हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे सच्चे हैं, तो जो सच्चे हैं वो तो बाबा के दिल में बसते हैं, तो इसीलिए एकदम हल्के भी हो जाएंगे। तो बाबा की झोपड़ी में आप बाबा को सखा रूप में देखो, बस मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, ये सखा रूप अनुभव करो। फिर हिस्ट्री हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ बाबा को टीचर रूप में देखो, कैसे टीचर बन करके बाबा हमको पढ़ाते हैं, कैसे टीचर बन करके तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं, कितनी बाबा ने हमारी दूर दृष्टि बनाई है, कितने ऊंच विचार बनाए, कितना विशाल हृदय बना लिया बाबा ने ये ज्ञान सिखा करके। तो वही हिस्ट्री हॉल में जो गद्दी है वहीं बाबा बैठ करके ही तो सारी मुरलियां चलाई है, तो इसलिए हिस्ट्री हॉल में बैठ के पूरा स्टूडेंट हूँ मैं, विद्यार्थी हूँ और बाबा हमारा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट माना पढ़ाई, स्टूडेंट माना सीखना, स्टूडेंट माना धारण करना। ऐसे नहीं मैं तो सबको जानता हूँ, ये कभी भी अभिमान न रखे कि मैं सबको जानता हूँ, कई रखते हैं अभी तो मैंने सब कुछ जान लिया, लेकिन बाबा कहते अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। कई बातें तो बाबा के बताते भी नहीं है, बाबा कहते जब वो बात आएगी ना खुद ही देखोगी, वेट एंड सी। सब बातें थोड़ी बताई जाती है, सब बातें बताने से वो सस्पेंस ही खत्म हो जाता है, वो मजा ही चला जाता है ना, सारी बातें कहानी की बता दो तो फिर वो मजा ही नहीं रहेगा, इसलिए कई बातें बाबा नहीं बताते हैं। बाबा कहते देखते चलो देखते चलो, क्योंकि इसलिए अचानक का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए बाबा के हिस्ट्री हॉल में स्टूडेंट बन के जो पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है उसका मनन चिंतन करो, तो देखो नई नई प्रेरणाएं आपको मिलेगी और फिर शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करेंगे, शांति स्तंभ पर बाबा को सतगुरु रूप में देखो, क्योंकि सतगुरु बाबा ने हमें पावन बनाया है, तो सतगुरु के रूप में बाबा को याद करेंगे तो बिल्कुल जैसे अशरीरी बन गए। ब्रह्मा बाबा ने कैसे हड्डियां हड्डियां अपनी गलाई है ना, यज्ञ में गलाई, कैसे गलाई, गला के पावन बने, लास्ट समय तक घड़ी तक बाबा ने सेवा की, ये नहीं कि बाबा बिस्तर पर ही रहे, नहीं, सेवा की बाबा ने अंतिम घड़ी तक भी, रात को भी बाबा मुरली चला के आए और मुरली चला के फिर आए कमरे में, और कैसे दो घड़ी का खेल था। बाबा ने सारे पत्रों के जवाब दिए उस दिन, सारे दिए, एक भी नहीं छोड़ा। ईशु दादी अपना अनुभव सुनाती, क्योंकि ईशु दादी लिखती थी, बाबा डिक्टेशन देते थे या लिखते थे लाल अक्षरों में, फिर दादी उसके ऊपर हिंदी में लिखती थी, क्योंकि दादी उनकी भाषा बाबा की पढ़ सकती थी, उर्दू थी, तो इसीलिए दादी अनुभव सुनाती है कि उस दिन शनिवार का दिन था, सवेरे 10 बजे तो पोस्ट आती थी, तो बाबा ने सब पत्रों के जवाब दिए। सवेरे बाबा क्लास में नहीं आए क्योंकि चेस्ट में पेन था, तो बाबा ने बहुत ठंडी थी, 18 जनवरी, समझ सकते कितनी ठंडी होगी, तो दादी ने कहा बाबा आप मत आइए कमरे से बाहर, मैं ही जाके योग कराती हूँ, क्योंकि बाबा योग भी कराते थे अमृत वेले और मुरली भी चलाते थे। तो बाबा को रोका दादी ने, क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा था, डॉक्टर को कहा बुलाएं, बाबा ने मना किया, क्योंकि बाबा जान गए थे कि अभी डॉक्टर तो बाहर के थे, बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो नहीं थे डॉक्टर उस समय, तो लौकिक में या जो सिविल हॉस्पिटल है उनका ही या कोई प्राइवेट डॉक्टर था वो ही बाबा के पास आते, बाबा ने मना किया, सब मना किया। फिर तो दिनचर्या तो नॉर्मल ही रही, वो पत्र भी बाबा ने लिखे पूरे, और फिर दोपहर को 4 बजे भी पोस्ट आती थी, 3:30-4 बजे भी पोस्ट आती थी, उस समय ईमेल वीमेल तो कुछ थे ही नहीं, लेटर्स ही आते थे सब सेंटरों के। तो बाबा आए ऑफिस में ईशु दादी को कहा कि आज जो लेटर्स आए हैं वो भी बाबा जवाब देंगे, तो दादी ने उनको कहा बाबा शनिवार है, शनिवार का दिन था, बाबा कल रविवार है तो कल तो छुट्टी है, पोस्ट नहीं होगी, तो बाबा कल जवाब देना। बाबा ने कहा नहीं आज ही देना है, बाबा कहते तो उनको कैसे फोर्स कर सकते। तो बाबा ने उन सब पत्रों का जवाब भी दिया, फिर कैसे बाबा ने मुरली भी चलाई, भोजन नहीं तो 7:30 बजे होता है, जैसे अभी 7:30 से 8:30 और बाबा 8:30 के बाद आते थे, 8:45 से 9:30 तक मुरली चलाते थे। उस दिन बाबा ने कहा कि आज सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई है तो बच्चे इंतजार करेंगे, बाबा को सब बच्चे याद थे, कि आज की मुरली, आज के डेट की मुरली नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी। तो बच्चे याद करेंगे कि बाबा ने क्यों नहीं मुरली चलाई, तो बच्चे बाबा जल्दी आएंगे क्लास में, इसलिए 6:30 बजे भोजन रखो, 7:30 की बजाय 6:30। तो 6:30 भोजन का प्रोग्राम हुआ, 7:30 बजे मानो तब तक पूरा हो गया, तो 9:45 की बजाय 7:45 या 8 बजे बाबा ने मुरली चलाई। सब पहुंच गए थे और 9:45 के करीब मुरली पूरी हुई और बाबा अपने कमरे में आए। और कमरे में आने से पहले हिस्ट्री हॉल के बाहर, माना हिस्ट्री हॉल में बाबा ने गुड नाइट नमस्ते कहा, और नमस्ते कहकर के बाबा गद्दी से उठे और जो दहलीज है ना हिस्ट्री हॉल का दरवाजा, वहां तक आए और आकर के फिर मुड़े अंदर की तरफ। और बाबा ने बच्चों को कहा, अच्छा नहीं तो गुड नाइट करते थे, नमस्ते करते थे, लेकिन उस दिन बच्चों के आगे झुककर का अच्छा बच्चों से छुट्टी, छुट्टी शब्द का कभी नहीं कहते थे छुट्टी, गुड नाइट, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, ये सब है, पर छुट्टी माना पूरा हुआ हिसाब, तो छुट्टी कही। और बाबा सीधा कमरे में आए और कैसे दादी जी उनके सामने गए और दादी जी ने देखा बाबा कमरे में पलंग पर बैठे हैं करीब 9:45 से पहले, और दादी आंखें बंद, तो बाबा ने, दादी आई सामने, आंखें तो बंद थी बाबा की और ऐसे बैठे थे अंदर ही अंदर, कैसे बाबा अशरीरी बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। और दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा 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 का, तो बाबा ने आंखें खोली और दादी को दृष्टि दी, बस वो दृष्टि और हाथ, एक सेकंड का खेल था और बाबा उड़ गए। सारी जो मुरली में बाबा कहते ना कि सारी विल पावर्स दादी को दे दी, है ना, दृष्टि और हाथ के द्वारा। तो दादी को महसूस हुई क्या हो गया, दादी को कुछ समझ में नहीं आया, हाथ ढीले हो गए, सिर झुक गया होगा, कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर दादी समझ गई। फिर तो डॉक्टर को बुला, लेकिन खेल तो खत्म हो गया था। तो कहने का भाव है कि अंत तक बाबा ने सेवा की, तो हमको भी क्या करना है, अपनी हड्डियां यज्ञ में, सेवा में देनी है, तभी तो फरिश्ता बनेंगे ना। फरिश्ता माना क्या, फरिश्ता माना जिसका फर्श से रिश्ता न हो, पद वो दूसरा अर्थ फरिश्ता माना, हड्डी मांस का शरीर नहीं, फरिश्तों को थोड़ी हड्डी मांस का शरीर है, स्थूल मनुष्यों को हड्डी मांस का शरीर है, लेकिन वो तब होगा जब ये हड्डियां भी बाबा की सेवा में लगाते हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा ने अंत तक की एक उदाहरण उस रूप का भी है। तो जब शांति स्तंभ पर जाते हैं तो क्या अनुभव करना, हाँ मैं भी फरिश्ता बन रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने मैं भी फरिश्ता हूँ, और सतगुरु शिव बाबा की याद में मैं आत्मा पावन बन, पावन ही होंगे फरिश्ता, तो पावन बनकर ही फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है। तो बस यही लक्ष्य, यही उद्देश्य इस भट्टी का अपने अंदर में रखना। और देखो चौथे दिन आप सब कैसे हो जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, बन जाएंगे 4 दिन के अंदर फरिश्ता, लेकिन लक्ष्य रखेंगे तो बहुत कुछ अनुभव करेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि अभी तक जितनी भी बठियां हुई उन सब बठियों में यही अनुभव सबने किया, और लास्ट दिन फिर सबका अनुभव भी पूछा जाएगा और हरेक ये अपना अनुभव भी बताएंगे, जो बताना चाहेंगे कि हमने इन 4-3 दिनों में क्या क्या अनुभव किया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति जी, हर की पौड़ी, वो तो मेरा अनुभव है वो हर की पौड़ी क्या है, 1974, 75, 76 मैं विदेश में थी, अफ्रीका में थी, मॉरिशस में थी, वहाँ सेवाएं शुरू की, सेवा केंद्र खोले। तो 76 में मैं मधुबन में आई, तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा क्योंकि उस समय कोई टीचर बहन यहाँ नहीं थी। बाबा तो साकार में बहनों को रखते ही नहीं थे मधुबन में, दादियों को भी नहीं रखते थे। बाबा कहते थे बहनों का स्थान सेंटर है, मधुबन में नहीं, इसलिए इनका नाम ही रखा पांडव भवन, यानी पांडवों के लिए ही रहने का। परमानेंट जो रेजिडेंस थे वो पांडव ही थे, क्योंकि थोड़ा बहुत स्किल काम, कारपेंट्री का काम या किचन का काम, इतने बड़े बड़े देगरे उठाना अब बहने कहाँ उठाएगी। इसीलिए भाइयों का यहाँ स्थान, तो बाबा कहते थे बहनों के लिए पांडव भवन नहीं है, ये पांडवों के लिए, भाइयों के लिए है, बहनों का काम सेंटरों पर। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो फिर तो सेवाएं यहाँ भी शुरू हुई। बाबा ने कहा यहाँ बठिया रखो, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो। तब तक ये ट्रेनिंग सेंटर भी खुल चुका, शुरू हो चुका था। बाबा के अंदर में बहुत था कि यहाँ ट्रेनिंग रखेंगे कुमारियों की, मतलब टीचर्स की आदि आदि। और दादी जानकी को बाबा कहते थे कि मैं तुम बच्ची, आपको ये ट्रेनिंग देनी है तो आपके लिए यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। दादी जानकी बताती है कि तो इंद्रप्रस्थ बनाया ताकि दादी जानकी वहां रहे और सबको वो ट्रेनिंग सेंटर, इसलिए नाम ही रखा ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देनी है। तो मतलब बाबा की बुद्धि में ये था, परंतु बाबा के होते हुए कोई बहने नहीं रहती थी यहाँ। लेकिन बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा अव्यक्त मुरली में पहली मुरली जो आई कि आपको ऐसे यहाँ पर ये बठिया होगी, ये होगा, जो कुछ कहा, तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने सभी दादियों को मधुबन में बुला लिया। जो बड़ी बड़ी दादियां थी सब मधुबन में ही रही, और फिर उसके द्वारा कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए। लेकिन कहने का भाव है कि अब बहनों को यहाँ रखना था, फिर निर्वैर भाई भी यहाँ रहने लगे, वो बॉम्बे में रहते थे। तो फिर निर्वैर भाई को बुद्धि में आया कि यहाँ कोई VIPs को हमें बुलाना है तो उनके लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो पांडव भवन के अंदर तो नहीं रह सकते, ये तो ब्राह्मणों के लिए है, तो पांडव भवन के बाहर जो राजयोग भवन है, ज्ञान विज्ञान भवन है, वो जमीन ली गई कि यहाँ VIPs के लिए हम शिविर रखेंगे, एक जो रखेंगे। तो मकान बन के तैयार हो गया था और कुछ कुछ VIPs को काना भी शुरू हो गया था। तो उस समय मैं आई थी, मॉरिशस से आई थी वापस। तो निर्वैर भाई को बुद्धि में था कि इसने बहुत अनुभव किया है शिविर कराने का, और फॉरेनर्स आने लगे थे 76 के अंदर, सब कितनी जगह विदेश में सेवा केंद्र खुल गए थे। तो विदेश का भी अनुभव, शिविर कराने का अनुभव विदेशों में हम कराते थे, तो वो अनुभव के कारण मुझे दादी जी ने कहा तो मधुबन में रहोगी, तो मैंने कहा जो बड़ों की आज्ञा। तो तब से मधुबन में रहना शुरू किया। अब जब मधुबन में रहना शुरू किया, 3 साल तक तो मैं कहीं नहीं गई, और 2 साल जो विदेश में रही वो तो इतना घूमना, इतने देशों में जाना, अफ्रीका के कितने देश है, कितने देशों में हम लोग गए सेवा करने। अब मधुबन में रहना शुरू किया तो 3 साल कहीं नहीं गई, तो थोड़ा थोड़ा संकल्प मुझे चला भी कहीं नहीं जाना है मुझे यहीं रहना है, ऐसे संकल्प आया। तो एक बार बाप दादा से मैं मिल रही थी, या मेडिटेशन हॉल में ही था मैं समझती हूँ, 1979-80 था। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम कौन सी गंगा हो, क्योंकि जो भी यहाँ आते थे सबकी सेवा करते थे, फॉरेनर्स का ट्रांसलेशन करते थे, यहाँ बैठ करके ट्रांसलेशन करते थे, विदेशियों के यहाँ हेडफोन बिछाते थे, और यही हॉल था, ओम शांति भवन तो था नहीं। तो इसीलिए बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची आप कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो सब है, आप विशेष कौन सी गंगा हो। अभी तो मैंने कहा ज्ञान गंगा के अलावा और कौन सी गंगा होगी, तो फिर मैंने कहा बहती गंगा हूँ वह प्रश्न करते ना, बिल्कुल यहाँ साथ में सामने आमने बैठ के प्रश्न करते थे, जवाब लेते थे, या हम प्रश्न करते थे बाबा जवाब देते थे, ऐसे लेन देन होती थी। तो मैंने कहा बहती गंगा हूँ, तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है। क्यों? क्योंकि सेंटर पर जो बहने रहती है वो तो बदलती रहती है, आज इस सेंटर पर और कल दूसरे सेंटर, वो बहती गंगा है, क्योंकि एक ही सेंटर पर थोड़ी कायम होती है, आजकल तो चलो कायम हो गई है, लेकिन पहले तो हाँ आप भले भले जाते हैं लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि फिक्स्ड है उनका सेंटर वही, तो आज यहाँ है कल वहाँ जाएंगी परसों वहाँ जाएंगी, तो बहती गंगा है वो। और जो जो स्टूडेंट्स है वो तो फिक्स्ड है ना, तो भक्त जो है वो तो अपनी जगह रहते हैं और गंगा बहती रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा वो जो सेंटरों पर रहती है बहने वो बहती गंगा है, तो आप कौन सी गंगा हो? अब मुझे तीसरी गंगा तो आई नहीं तो मैंने जवाब नहीं दिया, मुस्कुराती रही। तो बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, हर की पौड़ी की गंगा पर सारी दुनिया आती है, तो बच्ची यहाँ सारी दुनिया आएगी और तुम्हारे में नहाएगी। ये बाबा ने वरदान दिया उस समय हर की पौड़ी हो तो इसलिए ये हर की पौड़ी, समझ ये हर की पौड़ी। और दूसरा जो बाबा ने एक वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया था ओम शांति भवन में, क्योंकि उस समय हैदराबाद जो साउथ है हैदराबाद, तो वहां से नागार्जुना फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा ग्रुप आया था और उनको मैं वहां गई थी, उनका शिविर किया था, फिर वो सारा ग्रुप यहाँ बाबा से मिलने के लिए आया था, सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि वहां सेंटर होना चाहिए, तो सबसे बाबा मिल रहे थे और इनको हिंदी नहीं आती थी तो मैं ट्रांसलेशन कर रही थी इंग्लिश में। तो कैसे उस समय सबको कुछ न कुछ वरदान दिया और मुझे लगा बाबा तो मुझे खाली टोली देंगे, तो मैं जैसे बाबा के सामने गई और कोई संकल्प नहीं, बस बाबा के सामने गई, साथ में ही थी, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत पावरफुल दृष्टि थी, और बाबा ने मुझे ये वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने उस समय कहा। पर ये वरदान क्या दिया बाप रे, उसके बाद तो क्योंकि ये माइक पर बोला तो माइक तो स्पीकर तो सब जगह ऑन थे, तो वैसे मैंने कई तो चढ़ाने लगे, वाह 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 सरस्वती जी सरस्वती जी हा? अभी इस संगम पर सरस्वती तो भविष्य में लक्ष्मी जरूर बनोगी, लेकिन मेरे अंदर कोई उस प्रकार का नशा कुछ नहीं आया। मेरे अंदर में क्या विचार आया कि बाबा ने अगर मुझे सरस्वती कहा है इसके पीछे कोई राज होगा, बाबा हमसे कोई बहुत बड़ी सेवा कराना चाहते हैं, सेवा तो कर ही रही हूं पर कुछ और विशेष सेवा बाबा की बुद्धि में है, इसलिए ये टाइटल दिया है। पहले तो ये बात बुद्धि में आई, दूसरी बात ये आई कि अगर इस जुबान पर सरस्वती का वास है तो मेरी जुबान से कोई ऐसे शब्द अपशब्द या कोई ऐसे शब्द दुख देने वाले कभी न निकले, क्योंकि ज्ञान की वीणा मेरे जुबान पर है। तो ये बुद्धि में बस उसके थोड़े समय के बाद ये टीवी के लेक्चर्स का निमंत्रण मिला, इसीलिए बाबा ने ये वरदान दिया था। तो मैं अभी समझ सकती हूँ क्यों ये वरदान दिया। थैंक यू। ओम शांति ओम शांति
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शीलू बहन, बहुत सुंदर अनुभव आपका भी सुना, साथ साथ ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप कैसे बने वो बहुत सुंदर पुरुषार्थ की बातें आपने बताई। जैसे अभी सुना सरस्वती का वास आपकी वाणी में, हम जोधपुर राजस्थान में, हमारे पास एक भाई है, अच्छी पुलिस में सर्विस है, अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, वो तो जब भी आएंगे सेंटर पर, दीदी शीलू बहन वाला कैसे चला दो, पहले कैसे चलते थे अब सीडी चलती है, अब मोबाइल हो गया, मोबाइल में हमेशा उनका नियम है कि शीलू बहन की कमेंट्री जब मैं सुनता हूँ तो बस एकदम जैसे कि वतन में उड़ जाता हूँ। बाबा का वरदान है,
ये भी बाबा ने ही वरदान दिया था। और तो क्या हुआ कि मैं शिविर तो कराती थी और कमेंट्री भी से योग कराती थी, तो बाबा ने मुझे कहा कि पहला वरदान तो ये दिया उस समय कि आप दिल से बोलती हो, और दिल से जो बोलते उनका तीर दिल को लगता है, ये बाबा के शब्द थे, तो इसलिए आप दिल से बोलती हो, अथक सेवाधारी हो। बहुत वरदान तो बहुत मिले, लेकिन फिर बाबा ने कहा जब आप कमेंट्री कराती हो ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस समय कैसे शांति की गहराई में जा करके ये अनुभव कराओ। अभी ये कमेंट, ये जो बाबा ने मुझे उसे वरदान दिया, ये करुणा भाई ने सुन लिया है, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तो उस समय अभी ये कैसेट वैसेट कुछ भी नहीं था, ये यानी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो मुझे करुणा भाई ने कहा कि शिलू बहन देखो, बाबा ने आपको इतना सुंदर वरदान दिया और आप ये कराती हो, तो उसकी कैसेट क्यों नहीं भरती हो? तुम्हें कैसेट भरना क्या करना है उसके लिए, क्योंकि हम तो समय बोलते, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, ये सब कुछ नहीं था। ये मैं समझती हूँ 1979-80 के अंदर की बात होगी। तो फिर तो करुणा भाई ने कहा आप बॉम्बे जाओ, बॉम्बे का एक स्टूडियो है। तो अब समय या कोई स्टूडियो का भी प्रश्न नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। तो बॉम्बे में योगिनी बहन के पास गई, तो वहाँ पार्ला में एक बहुत अच्छा स्टूडियो था। तो कहा कि यहाँ स्टूडियो में कॉमेंट्री रिकॉर्ड कराओ, और वो मैं बॉम्बे गई और वो कमेंट्री तब की रिकॉर्ड हुई है जो अभी तक 1980 की होगी। उस समय की ये रिकॉर्डिंग अभी तक वो कैसेट या सीडी, अभी तो सीडी है वो, देखो इतनी पुरानी जो अविनाशी है, लेकिन ये बाबा का वरदान था, क्योंकि बाबा ने ऐसे सिखाया कैसे आप कहो। तो वही जो बाबा ने मुझे कहा वही जाकर के, कोई पढ़ा नहीं, कोई ऐसे नहीं कि पढ़ के सुना रही थी जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, बस मैं बाबा की याद में बैठ गई और बाबा को सामने रखा और कैसे क्या निकला पता ही नहीं, और रिकॉर्डिंग हो गई। ऐसा ड्रामा अमशा,
ऐसे बाबा ने अपने वरदानी महावाक्यों से बच्चों को इतने वरदान दिए, वरदानों से झोली भरी, और आप सबकी भी, हम सबकी भी बाबा भरते रहते हैं। हाँ शशि बहन आएंगे, थैंक यू। और भी देखो शीलू बहन की एक विशेषता, जो मैं परसों आई यहाँ पर प्रोग्राम बनाने के लिए, हाँ मैं अपना भी दूंगी, मैं अपना अनुभव सुनाऊंगी लास्ट पे। मैंने भी साकार बाबा की पालना ली, साकार बाबा के साथ के कुछ अनुभव लास्ट दिन आपको सुनाऊंगी जरूर। अभी तुम्हारी शशि बनाने वाली है। परसों मैं यहाँ आई ज्ञान सरोवर से महिला विंग की सेवा करके, शीलू बहन के साथ बैठ करके कुछ क्लासेस फाइनल कर रही थी, और बहुत सुंदर तरीके से शीलू बहन ने इधर उधर फोन करके मेरे को बहुत बहुत मदद की। तो कमरे में जब हम गए, मीनू बहन ने यही कहा, देखो शीलू बहन कितनी कोऑपरेटिव है, बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने हमें इतना, बॉम्बे भी फोन किया हमने, नलनी बहन को भी फोन किया, अवधेश बहन को भी फोन किया, सरला मेहसाना वाली, कई जिन जिन की क्लासेस करनी थी, कईयों के नंबर मेरे पास नहीं थे, शीलू बहन के ऑफिस में एक घंटा में बैठ करके हम लोगों ने इधर उधर फोन करके आप सबके लिए क्लासेस सेट की। तो मैं शीलू बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए भी, इतने सुंदर रूप से आपने हमें सहयोग दिया। हाँ मैं अभी आप शीलू बहन, मैं शील बहन, परिचय तो मैं थोड़ा सा भी दूंगी, फिर मैं जरूर आपको अपना अनुभव सुनाऊंगी कैसे साकार बाबा के वरदान से ही हम बाबा के बने, हमारा पूरा परिवार बाबा का बना। वो एक लंबा अनुभव है जिसमें आधा घंटा लगेगा,